केंद्रीय बजट 2026-27। आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट पर होगा विस्तृत विश्लेषण दिन भर।
सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन,
बजट पर जनमानस की प्रतिक्रिया और विशेष साक्षात्कार।
बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक
1 फरवरी रविवार सवेरे 10:10 से रात 10 बजे तक
आकाशवाणी FM गोल्ड
और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महरौली विधानसभा में 135 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, सरकार दिल्ली को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर स्थित दिल्ली एयरोसिटी मेट्रो स्टेशन को प्रमुख इंटरचेंज हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइकोट्रॉपिक मादक पदार्थ के गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र फरीदाबाद में 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महरौली विधानसभा में 135 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विकसित दिल्ली का सपना तभी पूरा होगा जब यहां के लोगों के घर, कॉलोनियां और विधानसभा क्षेत्र विकसित होंगे और महरौली उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
हर एक विधानसभा में हमारे 100-100 करोड़ से अधिक के काम हो रहे हैं। आज भी हमने 135 करोड़ के काम इस महरौली विधानसभा में शुरुआत की है और अन्य काम भी पाइपलाइन में है जो टेंडर प्रक्रिया में अभी चल रहे हैं। ये सारे काम जब जमीन पे दिखाई देने लगेंगे तो क्षेत्र की जनता जिस सुविधा के लिए वर्षों से तरस रही थी वो उनको मिल पाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महरौली की ऐतिहासिक भव्यता को सुरक्षित रखते हुए इसे 21वीं सदी की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है ताकि विरासत भी संरक्षित हो और भविष्य भी सशक्त हो। मुख्यमंत्री ने इन सभी परियोजनाओं को स्वच्छता सुनिश्चित करने, आधारभूत ढांचा मजबूत करने और नागरिकों के जीवन को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक ठोस कदम बताया। इस अवसर पर सांसद रामवीर सिंह बिदोड़ी और महरौली के विधायक गजेंद्र सिंह यादव भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि राजधानी में स्वच्छता, बेहतर कचरा प्रबंधन और धूल नियंत्रण करने के लिए दिल्ली नगर निगम को 500 करोड़ रुपए की एक मुश्त सहायता प्रदान की गई है। श्रीमती गुप्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि निरंतर सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए भी अब से हर वर्ष 300 करोड़ रुपए की नियमित सहायता देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस राशि से सड़कों की मरम्मत, धूल नियंत्रण, अत्याधुनिक सफाई मशीनों की खरीद और कचरे से ऊर्जा बनाने वाले नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कोष्ठ के उपयोग और कार्यों की प्रगति की सख्त निगरानी और समीक्षा भी की जाएगी। केंद्र सरकार कल से 13 फरवरी तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करेंगी। आगामी बजट को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया है कि और कहा कि यह बजट विकसित भारत की संकल्पना को और सशक्त करेगा। मुख्यमंत्री ने इस बजट को वर्ष 2047 तक एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और वैश्विक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र बनाने में सहयोगी बताया। यह बजट देश की आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के बजटीय प्रावधानों का सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रीय राजधानी की विकास योजनाओं पर भी पड़ेगा, जिसमें यमुना की सफाई, अपशिष्ट जल निकाय संयंत्र, प्रदूषण नियंत्रण और दिल्ली मेट्रो के आगामी चरणों का विस्तार शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट दिल्ली के समग्र विकास को नई गति देगा और विकसित भारत के साथ साथ विकसित दिल्ली के दृष्टिकोण को और मजबूत करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार राजधानी में धार्मिक पर्यटन और भजन क्लबिंग को बढ़ावा देने की दिशा में नई पहल शुरू करने जा रही है। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने चेन्नई में आयोजित पर्यटन शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन को संगठित रूप से विकसित कर दिल्ली को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
शिखर सम्मेलन के दौरान पर्यटन मंत्री ने बताया कि दिल्ली में धार्मिक महत्व वाले स्थलों को जोड़ते हुए विशेष धार्मिक मार्ग विकसित किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों सुव्यवस्थित मार्ग के माध्यम से दर्शन की सुविधा मिल सके। साथ ही राजधानी के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के आसपास आधुनिक सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी भी विकसित की जाएगी। श्री मिश्रा ने कहा कि दिल्ली अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण एक मिनी भारत की झलक देता है और लगभग 1200 संरक्षित स्मारक के साथ यह शहर ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता, व्यंजन और आधुनिक बुनियादी ढांचे का एक अद्भुत संगम है। श्री मिश्रा ने देश भर के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को दिल्ली सरकार के साथ जोड़ने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं में भजन क्लबिंग की सुंदर परंपरा लोकप्रिय हो रही है और प्रधानमंत्री ने भी भजन कीर्तन को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहकर इस परंपरा की सराहना की है। इस कड़ी में अब दिल्ली सरकार भजन क्लबिंग को हर उम्र और हर वर्ग में बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर स्थित दिल्ली एरोसिटी मेट्रो स्टेशन को एक प्रमुख इंटरचेंज हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
इस स्टेशन का विस्तार चौथे चरण के अंतर्गत निर्माणाधीन तुगलकाबाद एयरोसिटी गोल्डन लाइन कॉरिडोर के साथ जोड़ा जा रहा है। हाल ही में इस कॉरिडोर के एयरोसिटी से IGI हवाई अड्डा टर्मिनल 1 तक विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही भविष्य में इस स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि अलवर कॉरिडोर के लिए दिल्ली एयरोसिटी पर इंटरचेंज सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस नई इंटरचेंज सुविधा से तुगलकाबाद, अंबेडकर नगर और खानपुर जैसी दक्षिण दिल्ली के कई क्षेत्रों के यात्री अब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सभी टर्मिनल तक कम समय में सुगम यात्रा कर सकेंगे। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मासिक चक्र जीने के अधिकार और निजता के अधिकार का आंतरिक अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए निशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज जनकपुरी के DESU कॉलोनी में स्थित CM श्री स्कूल के वार्षिक उत्सव में शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया कि यह समारोह बच्चों की प्रतिभा, आत्मविश्वास और उत्कृष्ट प्रदर्शन का शानदार उत्सव रहा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइकोट्रॉपिक मादक पदार्थ के गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से 31 किलोग्राम अल्प्राजोलम यानी लगभग 3,00,000 गोलियां बरामद की गई हैं। इस कार्रवाई के दौरान अवैध फार्मा निर्माण इकाई का खुलासा हुआ, जहां दवाओं की पैकेजिंग और तैयार करने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि मौके से पैकेजिंग और निर्माण सामग्री, 20 रबर स्टैम्प तथा अंतर्राज्यीय सप्लाई में इस्तेमाल किया जा रहा एक वाहन भी जब्त किया गया। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क तथा सिस्टम CCTNS प्रगति डैशबोर्ड में गत वर्ष अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह के लिए 100% स्कोर के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि न्याय संहिता के सफल कार्यान्वयन, डेटा प्रबंधन और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्मों के प्रभावी उपयोग का परिणाम है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा CCTNS टीम और सभी जिलों के समन्वित प्रयासों ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की हिमवीर वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आज ग्रेटर नोएडा स्थित 39वीं वाहिनी ITBP में अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण पर आधारित वार्षिक स्मारिका हिमशिखा का भौतिक और डिजिटल संस्करण का भी विमोचन हुआ। भारतीय तटरक्षक बल कल अपना 50वां स्थापना दिवस मनाएगा, जो 5 दशकों की निष्ठावान और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र फरीदाबाद में 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 का उद्घाटन किया। श्री राधाकृष्णन ने इस कार्यक्रम के दौरान मेला साथी ऐप का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
इस अवसर पर श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के कारीगर सदियों पुराने ज्ञान के संरक्षक हैं और उन्हें सशक्त बनाना एक मजबूत समावेशी और टिकाऊ अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक हस्तशिल्प क्षेत्र को राष्ट्रीय पुनर्जागरण के केंद्र में रखा गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जैसी पहल कारीगरों को पूर्ण सहायता, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान कर रही है। इस वर्ष मेले का मुख्य विषय है स्थानीय से वैश्विक, जिसका अर्थ है स्थानीय कारीगरों की पारंपरिक कला को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना। ये उत्सव 15 फरवरी तक चलेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली के रोहिणी इलाके में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में हिस्सा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री धामी ने कहा कि यह महोत्सव उत्तराखंड के लोक कलाकारों के लिए एक मंच प्रदान करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु रविदास की जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास एक पूजनीय संत और महान समाज सुधारक थे। उन्होंने लोगों से गुरु रविदास की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सिख धर्म के 7वें गुरु हरराय साहिब जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर शहरवासियों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि गुरु साहिब का जीवन सभी को मानवता की सेवा, जीव दया और पर्यावरण संरक्षण का शाश्वत संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु साहिब के बताए मार्ग पर चलकर प्रेम, सेवा और सद्भाव को अपने जीवन में अंगीकार करना ही सच्ची श्रद्धा है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI की गणना से खाद्य और शिक्षा को हटा दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये दावे झूठे हैं और खाद्य तथा शिक्षा CPI बास्केट के प्रमुख हिस्सा बने हुए हैं। सरकार ने नागरिकों से सटीक जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने और किसी भी खबर को साझा करने से पहले उसकी पुष्टि करने का आग्रह किया। और अब मौसम की खबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह धुंध छाई रही, वहीं दिन के समय धूप खिली रही। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महरौली विधानसभा क्षेत्र में 135 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, सरकार दिल्ली को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर स्थित दिल्ली एरोसिटी मेट्रो स्टेशन को प्रमुख इंटरचेंज हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइकोट्रॉपिक मादक पदार्थ के गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र फरीदाबाद में 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
केंद्रीय बजट 2026-27। आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट पर होगा विस्तृत विश्लेषण दिन भर।
सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन,
बजट पर जनमानस की प्रतिक्रिया और विशेष साक्षात्कार।
बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक
1 फरवरी रविवार सवेरे 10:10 से रात 10 बजे तक
आकाशवाणी FM गोल्ड
और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।